ये आकाशवाणी दिल्ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक भाजपा में शामिल। पहली भारतीय नौसेना हाफ मैराथन कल नई दिल्ली में आयोजित होगी और विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली में शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया है और उन्होंने कहा कि विकसित भारत की देश की यात्रा को गति देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि तथा शहरी विकास पर केंद्रित है और इसमें लगातार सुधारों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में देश के विकसित भारत की ओर बढ़ने के बारे में कई प्रावधान किए गए हैं।
The budget actually says several things about our path towards Viksit Bharat. It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms.
भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है और कहा है कि इसमें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई लाभकारी प्रस्ताव हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है।
ये बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। कृषि और किसानों के कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गरीब, महिलाएं, युवा और विशेषकर मध्यम वर्ग के कल्याण का ये बजट है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये पूर्ण बजट है।
हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40-25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए दिया गया है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का खाका है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाला बताया। भारतीय उद्योग परिसंघ के दिवालिया और शोधन अक्षमता पर भारतीय उद्योग परिसंघ कार्यबल के अध्यक्ष शार्दुल श्रॉफ ने कहा है कि इस बजट में सबसे बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को व्यक्तिगत कराधान से लगभग पूरी तरह से बाहर करना है। वहीं कई विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में बेरोजगारी की समस्या और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।
कि अगर आपके पास तनख्वाह है तो आप कम टैक्स देंगे, लेकिन जिनके पास रोजगार नहीं है उनके पास तनख्वाह कहाँ से है। और बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुना फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण में, कहाँ थे बेरोजगारी, कहाँ थे हमारे युवाओं के रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में बेरोजगारी।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सरकार पर बजट में मध्यम वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
I have listened to the budget speech extremely carefully. I think there's nothing for the middle class. They're only trying to fool the people like they've done in the past 10 years.
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट को संभावनाओं से भरा बताया और कहा कि इसमें मध्यम वर्ग, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, निर्यात और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई दिल्ली में चिकित्सा उद्योग से जुड़े पेशेवर विवेक ने कहा कि आयकर के संशोधित स्लैब से मध्यम वर्ग को लाभ होगा। वरिष्ठ नागरिक विपिन रॉय पटेल ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था में विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत उद्यान कल से 30 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा।
राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान जनता के लिए 2 महीने तक खुला रहेगा। इस उद्यान में आगंतुक मंगलवार से लेकर रविवार तक घूम सकते हैं। सोमवार को ये उद्यान रखरखाव के कारण बंद रहेगा। इस वर्ष पर्यटक ट्यूलिप के साथ साथ 140 विभिन्न प्रकार के गुलाब और 80 से अधिक अन्य फूल भी देख सकेंगे। उद्यान का खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। उद्यान में पर्यटक गेट नंबर 35 से एंट्री कर सकते हैं। आगंतुक यहां तक पहुंचने के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन तक के लिए मेट्रो ले सकते हैं। यहां से हर 30 मिनट में सुबह 9:30 से लेकर शाम 6 बजे तक के बीच में शटल बस भी चलेगी। आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। अमृत उद्यान के अलावा लोग मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी देख सकते हैं। अमृत उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है और इसे राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुक किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इन विधायकों में पालम से भावना गौड़, बिजवासन से बीएस जून, आदर्शनगर से पवन शर्मा, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, जनकपुरी से राजेश ऋषि, त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया, मेहरोली से नरेश यादव और मादीपुर से गिरीश सोनी के नाम शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में कई सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि शराब घोटाला और जल बोर्ड घोटाला सहित हजारों करोड़ रूपये के घोटाले किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सदर बाजार में एक रैली में दावा किया कि देश में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कई सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने शहर के स्कूलों और अस्पतालों में सुधार किया है और दिल्ली के लोगों को बिजली तथा पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है बाबरपुर विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता अमन यादव की रिपोर्ट।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले की बाबरपुर सीट पर बीते 10 वर्षों से सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस सीट से लगातार 2 बार अपनी जीत का परचम लहराया है। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा के नरेश गौड़ को 33,000 से अधिक मतों से हराया था। श्री राय के अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन और मतदाताओं के बीच बेहतर छवि को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने नए चेहरे अनिल वशिष्ठ को इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। उधर कांग्रेस ने सीलमपुर के पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे इस सीट पर एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। बाबरपुर में कुल 2,16,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें करीब 1,14,000 से अधिक पुरुष और 1,00,000 से अधिक महिला वोटर हैं। मिली जुली आबादी वाले बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मध्यम से लेकर पौश इलाके तक आते हैं। इनमें कूलर जैकेट पतंग के लिए प्रसिद्ध जाफराबाद मार्केट, नवीन शाहदरा, बाबरपुर, बलबीर नगर, शिवाजी पार्क और कबूल नगर जैसी कॉलोनियां शामिल हैं। इस सीट पर सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक जाम, अपराध और पार्किंग की कमी लोगों की सबसे प्रमुख समस्याएं हैं। इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी अपनी जीत का रथ जारी रखती है या भाजपा और कांग्रेस इस रथ को रोकने में कामयाब होती है।
दिल्ली नगर निगम ने मतदाताओं की सहायता के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। निगम के आईटी निदेशक दिलखुश मीणा ने कहा कि निगम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेविगेशन, दिशा निर्देश और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान कर मतदाताओं को सहायता प्रदान करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 1,005 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 436 गैर लाइसेंसी हथियार और 492 अवैध कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार लगभग 1,00,000 लीटर से अधिक शराब, करीब 77 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 170 किलोग्राम मादक पदार्थ और 10 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई है। पहली भारतीय नौसेना हाफ मैराथन कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठित व्यक्ति, नागरिक अतिथि और प्रसिद्ध खिलाड़ी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकें पढ़ना एक शौक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी अनुभव है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की पुस्तकें पढ़ने से क्षेत्रों और समुदायों के बीच सेतु बनता है। राष्ट्रपति ने सभी से अपील की कि बच्चों की पुस्तकों के सृजन और संवर्धन को विशेष महत्व दें। उन्होंने कहा कि बच्चों में सबसे अच्छी कोई आदत विकसित की जा सकती है तो वो है पुस्तकों से प्रेम।
Developing the habit of reading among our children should be done in a concerted and consistent manner by leaders, elders, teachers, writers, publishers, voluntary organizations, social workers, media groups and everyone who can contribute to this cause. When you make a child enjoy reading, you contribute a nation building.
इस वर्ष के पुस्तक मेले में रूस प्रमुख देश के रूप में शामिल है। मेला 9 दिन तक चलेगा और इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबूधाबी और कतर सहित 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। लगभग 2000 प्रकाशक और 1000 वक्ता भी विश्व पुस्तक मेले में भागीदारी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय और सुबह हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक भाजपा में शामिल। पहली भारतीय नौसेना हाफ मैराथन कल नई दिल्ली में आयोजित होगी और विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।